हरे कृष्णा। जगन्नाथ कथा का प्रारंभ शुभारंभ का पहले मीरा रोड का मंदिर का तरफ से आप लोग सत्संग में आए हो, सबको हार्दिक स्वागत करते हैं। जो कि जगन्नाथ कथा पे आके 5 दिन तक श्रवण करता है, पंचदिवसीय कथा होता है, क्योंकि भगवान भागवत जब कथा होता है तो 7 दिन होता है, रामचरित कथा होता है तो 9 दिन होता है, और जगन्नाथ कथा होता है तो 5 दिन होता है। और इधर मैं देख रहा हूँ कुछ माता जी भी है वृंदावन में, ये कथा सुने हैं बहुत सारा मीरा रोड के, पता नहीं था लेकिन फिर भी, क्योंकि बारम्बार जगन्नाथ वृंदावन में कथा होता रहता है, और 2-3 महीना में जगन्नाथ कथा, क्योंकि जगन्नाथ कथा कोई सी मंदिर पे चर्चा नहीं होता है, होता है तो 1 घंटा के लिए कोई चर्चा हो गया। जहाँ पे कथा होता था राम का कथा होता है, जहाँ पे कथा होता है कृष्ण कथा होता है, और नहीं तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में चैतन्य चरितामृत चैतन्य लीला होता है, लेकिन जगन्नाथ कथा आप लोग भी पहली बार सुन रहे होगा। लेकिन मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, कितने भक्त जगन्नाथपुरी दर्शन किए हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, बस इतना ही, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जगन्नाथपुरी जो गए हैं, और जो नहीं गए एक बार जाकर दर्शन करें भाग्य में, क्योंकि जगन्नाथपुरी चतुर्था 4 धाम का अंदर एक धाम है, जो कि कलयुग का धाम है। सत्ययुग में बद्रीनाथ, तृतीया में रामेश्वरम, द्वापर में द्वारिकापुरी, कलयुग में जगन्नाथपुरी। पुरी इसलिए नाम है, संपूर्ण यात्रा का पूर्ण होता है इसलिए नाम है पुरी, इसलिए वहाँ जाना चाहिए यात्रा को फल यात्रा सफल बनाने के लिए। और वृंदावन धाम जो है स्वयं प्रकट धाम है, वृंदावन धाम वो 4 धाम का अंदर नहीं जाता है, तो वृंदावन धाम इसलिए कहते हैं। 4 धाम दर्शन करने का फल एक रात वृंदावन में वास करने का 7 समान है। वृंदावन मंदिर पे कोई भी आवाज देता है तो बस सिक्योरिटी हमारा टाइट है, 2 मिनट में उनको भगा देगा। बात करना है तो बाहर बात करो, पारिवारिक बात मंदिर के अंदर बात नहीं करना है। एक बात आप लोगों को बॉम्बे में है लेकिन फिर भी आपको वार्निंग दे रहा हूँ, मंदिर के अंदर आना है कृष्ण का बात करने के लिए, क्योंकि मंदिर भगवान सामने में खड़े है। वृंदावन जाते हो तो वृंदावन में सिर्फ भगवान के बारे में चर्चा करना है, सिंपल है। भगवान कृष्ण हर जगह पे हर परमात्मा रूप में है, लेकिन जानना चाहिए धाम और मंदिर बहुत ही जहाँ पे क्या कहाँ पे क्या करना चाहिए। वृंदावन धाम में वृंदावन धाम का रेत को प्राप्त करने के लिए, ब्रज रज को प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक का देवता लोग रोते हैं स्वर्गलोक में रह के, और हम जाते हैं वृंदावन धाम। धाम में जाकर करना क्या चाहिए? धाम में सिंपल है प्रभु का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वृंदावन धाम और मंदिर, जब मंदिर आते हैं ये वैकुंठ धाम है, मंदिर को श्रील प्रभुपाद कहते हैं मैं हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में हर शहर में एक एक वैकुंठ धाम बनाऊंगा, और मंदिर एक वैकुंठ धाम कहा जाता है। और मंदिर पे आते हैं तो सिंपल क्या करना चाहिए? प्रभु का नाम। धाम है मंदिर पे आके भगवान को दर्शन करके ना चाहिए। तब आज हम चर्चा का विषय है जगन्नाथ का ऊपर, जगन्नाथ जी किस प्रकार एक भक्त को प्राप्त हुए, और वह भक्त किस प्रकार जगन्नाथपुरी का मंदिर बनाया, और जगन्नाथ स्वयं उनका हाथ में सेवा लिए, इसका बारे में, उनका मतलब जगन्नाथ का स्वरूप काल बताएंगे, लेकिन आज मंदिर का बारे में, पहले जगन्नाथ को कैसा प्राप्त किया गया है ये जानना चाहिए। पहले आपको जानना चाहते हैं, आपको बताना चाहता हूँ, आप जानते हैं जगन्नाथ भक्त व्याकुलता होता है। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का दोनों हाथ ऐसा उठाए किसके लिए? ये हाथ उठाने का एक मुद्रा है, ये है शरणागत मुद्रा। चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ उठाए मतलब शरणागत मुद्रा, दोनों हाथ उठाए। और कृष्ण का देखिए, कृष्ण ने बांसुरी मुद्रा में है, बांसुरी बजा रहा है, और भगवान राम ने धनुष मुद्रा में, और जगन्नाथ आलिंगन मुद्रा में। और किसको आलिंगन करने के लिए? भक्त को आलिंगन करने के लिए, भक्त व्याकुलता, इसलिए भगवान जगन्नाथ का दूसरा नाम है भक्त वत्सल, जगन्नाथ भक्त व्याकुलता। इसलिए जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़ के रथ में विराजमान होते हैं सारा संसार का लोग को दर्शन देने के लिए। संसार का लोग आए नहीं आए, संसार का लोग को दर्शन देने के लिए आते हैं बाहर। और भगवान अपना वाणी को सुनने के लिए अपना सिंहासन छोड़कर बाहर चले गए थे बैगन का खेती पे। कुछ इसका बारे में कभी सुने? स्वयं जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़कर गए थे हाँ, लेकिन अभी हम लोग भगवान के बारे में चर्चा करते घर छोड़कर नहीं आ पा रहा है। भगवान अपना वाणी को सुनने के लिए इसलिए कहते हैं जिसी घर पे भगवत गीता पाठ किया जाता है, जिसी घर पे भागवत पाठ किया जाता है, उसी घर पे स्वयं भगवान आते हैं सुनने के लिए। क्यों? अपना वाणी को सुनने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन इसलिए कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति घर पे भगवत गीता और भागवत को पढ़ना चाहिए। लेकिन लोग गीता और भागवत नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते? क्या पढ़ते? वहां से आंसर आ रहा है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, न्यूज़ में है क्या? न्यू अर्थ नया, न्यू का अर्थ क्या है? नया। दो दिन का घटना निकला है उसका आज पढ़ रहा है, नया है? दस दिन का घटना आज पढ़ रहा है, नया है? उसमें है क्या देश विदेश का घटना? खुद का बारे में मालूम नहीं, दूसरा का बारे में सोच के फुल टेंशन। और खुद का बारे में किसमें है? भगवद गीता पढ़ो, भगवद गीता को भागवत पढ़ो, समझो पहले। गीता पढ़ने मात्र से डेली जो भगवद गीता पढ़ता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। गीता पढ़ने मात्र से, आप समझे नहीं समझे, पढ़े भगवत गीता को, एक दिन समझ में आएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं गीता पढ़ने समझ में आएगा, नहीं आएगा। गीता समझ में नहीं आएगा तो गीता कम से बांटो, कोई ना कोई पढ़ेगा, दान करो भगवत गीता को। एक ही भगवत गीता दान करने मात्र से आपका भी इतने पुण्य, भगवत गीता दान देने से भगवान अपना खाता पे नहीं लेके पा रहे, ये खाता फूल हो गया, इतना पुण्य फल है गीता दान देने से। कम से कम गीता बांटिए। अभी तो भारत में ये सारा चीज कमी आ रहा है, आप दुबई चले जाइए, मुसलमान लोग किसी प्रकार उनका चीज को देते रहते हैं। ये जानना चाहिए भारत का कल्चर किसी प्रकार स्थिति डाउन जा रहा है। इसलिए संस्था एक ही है, इस्कॉन संस्था सारा विश्व में किस प्रकार प्रचार कर रहा है, भक्ति का मार्ग को शिक्षा दे रहा है। तब ये जो जगन्नाथ कथा है बहुत रहस्यमय कथा है और हमें आगे चर्चा करते हैं। उड़ीसा में एक नयागढ़ करके की जिला है, वो प्रसिद्ध जगह है नयागढ़, भुवनेश्वर से लगभग 180 किलोमीटर दूरी पर। वहां पे भगवान नीलमाधव थे और नीलमाधव का रूप था चतुर्भुज नारायण, चार भुज चतुर्भुज नारायण का रूप में थे। तब श्री ब्रह्मा जी का प्रथम प्रारब्ध में श्री चतुर्भुज भगवान श्री नीलमाधव का मूर्ति का रूप में शंख क्षेत्र नीलांचल में पतित जन को कृपा वितरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। ब्रह्मा का प्रथम प्रारब्ध कहने से शास्त्र का अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 14 मनंतर आते हैं। एक ही मनंतर मतलब एक स्तर दिव्य युग, और एक ही दिव्य युग मतलब सत्य तृतीया द्वापर कली, ये चार युग मिला के एक दिव्य युग होता है। प्रथम मनंतर को स्वयंभू मनंतर और स्वयंभू मनंतर को द्वितीय दिव्य युग में जो सत्य प्रारंभ होता है, उसी सत्य युग में इंद्रदुम्न नामक एक सूर्य वंश के परम विष्णु भक्त राजा मालव देश मतलब अवंती नगर, जिसको आज के समय पे उज्जैन कहा जाता है, वहां पे राजूती करते थे। तब सत्य युग के मध्य भारत से उज्जैनी प्राचीन अवंती नगरी पे इंद्रदुम्न नाम का राजा राज्य करते थे। उनके रानी का नाम था गुंडीचा। इसलिए जगन्नाथपुरी में दो मंदिर है, बड़े मंदिर एक ही है जगन्नाथ मंदिर हाँ, और दूसरा मंदिर का नाम है रानी का नाम का अनुसार मंदिर का नाम है गुंडीचा मंदिर। और वो गुंडीचा मंदिर पे भगवान जगन्नाथ 9 दिन के लिए आते हैं, नवरात्रि यात्रा होता है, 9 दिन के लिए वो आते हैं। और 365 से 9 माइनस करने से कितना हुआ? 356 डेज जगन्नाथ मंदिर पे रहते हैं। और 56 से फिर 15 दिन दर्शन नहीं देते हैं, स्नान पूर्णिमा से रथ यात्रा तक जगन्नाथ दर्शन नहीं देते हैं। क्यों? भगवान भुखार होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान भी भुखार होते हैं क्या? बहुत सारे लोग का मन में सब अलग अलग प्रश्न आता है, भगवान क्या खाते हैं क्या, भगवान क्या सोते हैं क्या, सब कुछ भगवान लीला करने के लिए, मानवीय लीला करने के लिए भगवान ये प्रकट होते हैं धराधाम पे। ये जानना चाहिए भगवान ये धरती पे आते हैं तब मेन है, दो कारण के लिए धरती पे आते हैं। भगवान भगवद गीता में 4 अध्याय श्लोक नंबर 8 में कहा है, परित्रणाय साधुना विनाशय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मेन है दो कारण, पहले है साधु को रक्षा करना, इसलिए पहले शब्द आया परित्रणाय साधुना, साधु को पहले रक्षा करने के लिए, मेन उद्देश्य उनका साधु को रक्षा करने, साधु बनेंगे तब रक्षा करेंगे भगवान ना, बीड़ी सिगरेट पिएंगे तो साधु बन गए क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं इस प्रकार गंजा पी के साधु बन गए, साधु ये नहीं है। साधु का भी एग्जाम्पल भगवान भगवद गीता में कहे, जत जत आचार्य श्रेष्ठ से तत्त तेवत्र जना सजत प्रमाण कुरुते लोकस्तदन वर्तते। इस प्रकार साधु ऐसा बनना चाहिए, सत मार्ग पर चलना, सत आचरण करना, कोई उच्चारण से गुरु नहीं बनता है, आचरण से गुरु बनता है। हमें किसको भी गुरु मान लेते हैं, किसको भी साधु मान लेते हैं, ड्रेस पहनने वाले कोई साधु नहीं बन जाता है, दाढ़ी मूछ रखने वाले साधु नहीं बन जाते हैं, साधु वही है सत मार्ग पर चलता है, सत बोलता है, सत आचरण करता है, उसको साधु कहा जाता है, उसको गुरु कहा जाता है, ये जानना चाहिए। तब राजा का पत्नी का नाम था गुंडीचा, उन्हीं का नाम से दूसरा मंदिर बना हुआ। तब राजा और रानी दोनों बड़े उत्तम भक्त है, धार्मिक थे, इतना अपना जीवन में धर्म किए, मतलब अभी का टाइम पे पेन पेपर नहीं मिलेगा लिखने के लिए, अपना जीवन में इतना धार्मिक प्रवृत्ति का दोनों राजा और रानी, लेकिन इतना धर्म करने का बाद भी कोई संतान नहीं था, नहीं संतान, अभी का टाइम पे संसार में किसी का संतान नहीं होता तो बहुत परेशानी होता है, बोला मैं इतना धर्म कर रहा हूँ क्या भगवान पत्थर पलट गए, भगवान कुछ नहीं करते हैं हमारे लिए, हम इतने धर्म कर रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, दान देते हैं, ये करते वो करते वो करते, ए, हमारा संतान नहीं हो रहा है, वो सोचते हैं, ऐसा भी सोचना गलत है, ऐसा सोचना भी गलत है, क्यों? क्योंकि आप भगवान के पास समर्पित हो जाना चाहिए, आपका पिछले कर्म का अनुसार सब कुछ मिलने वाला है, ये निश्चिंत है, ये ऑलरेडी फिक्स है, जो होना है होगा, इसलिए कहते हैं पिछले जन्म में जो किया अभी मिल रहा है, अभी जो करोगे नेक्स्ट लाइफ के लिए तैयार कर रहा है, अभी जो कुछ कर रहे हैं नेक्स्ट लाइफ के लिए, ये समझ जाना चाहिए। हर व्यक्ति के साथ कर्मफल अटैच है, अपना अपना कर्मफल लेकर आप आए हैं धरती पे, अपने जैसा किया इसी प्रकार की ये मिलेगा, गारंटी है, ये जान लेना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं, हम प्रयास भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, वो कर मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, लेकिन प्रयास सक्सेसफुल नहीं होता है। अरे भगवान का पास आकर प्रार्थना करो, और भगवान ने जो कराना है और जो पिछले जन्म का अनुसार किया है वो होगा। एक एग्जाम्पल आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ किस प्रकार होता है कर्म का रिजल्ट, अभी भी मिलेगा, कितना जन्म का हो, ऐसा नहीं कि पिछले जन्म में किया मतलब पिछले जन्म में का इसी जन्म में मिल जाए, हो सकता है 50 जन्म का पहले का भी आज भी मिलेगा, हो सकता है 100 जन्म का पहले का भी आज मिलेगा इसका कर्म का रिजल्ट। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ धृतराष्ट्र के बारे में, जब धृतराष्ट्र इसी जन्म में अंधा था, लेकिन पहले जन्म में ऐसा अंधा नहीं था, 25 साल का पहले उन्होंने शिकारी जंगल में जाके एक ही चिड़िया को मारने के लिए गया था, लेकिन चिड़िया में तीर नहीं लगा के चिड़िया का जितने से वो अंडे था, कितना अंडे था, 100 अंडे, और उनका तीर में उस 100 अंडे को अंडे टूट गया, अभी उनको भोगना पड़ा, क्या भोगना पड़ा, धृतराष्ट्र का सामने उनका बच्चे कितने थे, 100 को 100 बच्चे, सब जवान थे, उम्र सब 25-30 साल ज्यादा से ज्यादा, सब जवान उम्र वाले बच्चे को अभी, तब धृतराष्ट्र आश्चर्य होकर पूछने लगा विदुर जी को, और विदुर जी बता रहा है, बोला 50 जन्म का पहले क्या किया था आपको कुछ मालूम है क्या, वो कर्म अभी मिल रहा है, इसलिए वो टाइम पे वो काम किया था अभी मिला, सोच लीजिए। और प्रत्येक व्यक्ति के साथ कर्म फल अटैच है, और दूसरा है कि साइंटिफिक एक एग्जांपल दे रहा हूं कर्म फल कैसा अटैच है, हर व्यक्ति के साथ कर्म फल कैसा अटैच है। पिता माता का 5 बच्चे होते हैं, पिता माता एक ही है, 5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे का शरीर का गठन एक ही होता है, एस और नो, 5 बच्चे का शरीर का गठन कैसा होता है, एक ही है, एक ही नहीं है। 5 बच्चे का जो नेचर, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वभाव, स्वभाव एक ही है, नहीं है। क्यों नहीं, एक ही जगह से आए, पितामाता एक ही है, एक ही जगह से है, एक ही स्थान है, एक ही मशीन है, तो क्यों नहीं हुआ? पांच बच का शरीर का गठन अलग है, पांच बच का नेचर सबका अलग अलग है, क्यों हुआ? कर्म फल। कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई ज्ञानी, कोई बुद्धिमान, कोई तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ कर्म फल अटैच है। और ये कर्म फल को तोड़ने वाले भगवान ही तोड़ सकते, और कोई संसार में तोड़ नहीं सकता है भगवान। इसलिए भगवद गीता में कहे, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षे इच्छामि मा शुचः, आप मेरा शरण में आओ, संपूर्ण पाप को मैं नाश कर सकता हूँ, ना कोई नेता हमारा पाप को नष्ट कर सकता है, और सब लोग नेता का पीछे भाग रहा है, चलो कोई देवता भी हमारा पाप को नष्ट नहीं कर सकते, देवता लोग भी हमारा कर्म फल को नहीं तोड़ सकते, और सारा संसार का लोग देवता लोग को पूजा करते रहते, सुबह से शाम तक ये पूजा करना, वो पूजा करना, सोमवार शिव जी, मंगलवार गणपति, बुधवार मंगलवार हनुमान जी, बुधवार गणपति, गुरुवार लक्ष्मी जी, और शुक्रवार वैष्णव देवी, शनिवार शनि देवता, संडे में कुछ मंदिर है नहीं, तब संडे में लोग जाते फिल्म हॉल, कलयुग का मंदिर है, तो ये जान लेना चाहिए। तब कम से कम एक ही, इसलिए कहते हैं एक देव देव की पुत्र भगवान एक ही है कृष्णा, उनको पूजा करो, सारा कर्म फल ऑटोमेटिक। लेकिन यहाँ पे राजा और रानी इतने धर्म करने का बाद भी उनका संतान नहीं है, निसंतान, लेकिन इसमें कोई शोक नहीं है, वो कभी शोक नहीं करते हैं, बच्चे हो नहीं हो, और प्रचुर धन संपत्ति होने का पर भी ये दोनों विषयों में से संपूर्ण रूप से उदासीन रहकर सदा सर्वदा भगवान की सेवा में रत रहते थे, और उनका हृदय में भगवान के साक्षात दर्शन करने का करने के लिए प्रबल इच्छा थी, किसा भगवान साक्षात दर्शन हो, और भगवान की कृपा प्राप्ति के अभिलाषा से जीवन व्यतीत कर रहे थे, सदा मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, और वह दिन कब आएगा जब हमें साक्षात अपने प्रभु को दर्शन कर पाएंगे। इंद्रद्युम्न राजा और रानी का नाम क्या था? मैं बीच में प्रश्न पूछूंगा आप लोग को, कम से कम आप लोग का मन इधर है कि अभी शाम का टाइम पे चाय का दुकान पे है, इसलिए बीच बीच में मैं प्रश्न पूछता हूँ। तो इसी प्रकार जब गीता पढ़ाई किया जा रहा था, तब कृष्ण बोल रहा है, अर्जुन सुन रहा है, अर्जुन भी बोल रहा है और कृष्ण भी सुन रहा है, और भागवत भी ऐसा ही हुआ था, शुक्रदेव बोल रहा है, परीक्षित सुन रहा है, परीक्षित भी पूछ रहा है, शुक्रदेव बोल रहा है, इसलिए ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ बैठे रहे और कुछ बोलना नहीं है, लेकिन बीच में पूछूंगा। तब राजा का नाम था इंद्रद्युम्न और रानी का नाम था गुंडीचा। तब दोनों का इच्छा था कैसा प्रभु को साक्षात दर्शन करने के लिए। राजा इंद्रद्युम्न स्वयं ही देश विदेश से आने वाले सभी तीर्थयात्रियों का आदर सत्कार अपने महल पे अतिथि गृह में करते थे, और गृहस्थ का धर्म पहला धर्म है अतिथि सत्कार। आप जितने सब बैठे हैं कितने भक्त लोग को अतिथि सत्कार करते, थोड़ा हाथ उठाइए। अभी कलयुग में माता जी एकला उठाया, हो सकता है माता जी पिछले कितना जन्म में सबरी था होगा तो अतिथि सत्कार गृहस्थ धर्म का पहला नियम है अतिथि सत्कार। संसार में लोग बोलते हैं हमें गृहस्थ है, लेकिन गृहस्थ का धर्म क्या है बोला मालूम नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं हमें ब्राह्मण है, लेकिन कौन सा ब्राह्मण, ना चतुर्वेदी, ना चार वेद का नाम क्या है, ना मालूम नहीं है। उसी प्रकार गृहस्थ मतलब क्या है, गृहस्थ का धर्म तो पहले बताओ। गृहस्थ का पहला धर्म है अतिथि सत्कार। कोई भी शत्रु का रूप में आ जाए, मित्र का रूप में आ जाए, उसको सत्कार करना है गृहस्थ का पहला कर्तव्य। जब सुदामा गया था भगवान के दरबार पे, भगवान अपना सिंहासन छोड़ दिए और अतिथि सत्कार करने लगे, अपना सिंहासन छोड़ दिए, और सिंहासन में किसको बैठाए? गुजराती लोग को मालूम होगा ना ज्यादा, सुदामा को बैठाए। सुदामा को बैठाए, भगवान नीचे बैठ के पैर धोए, सोचो भगवान कितने अतिथि सत्कार करने में लगे। तब तो उसी प्रकार गृहस्थ धर्म का पहला कर्तव्य है अतिथि सत्कार, और ये अतिथि सत्कार करने के लिए राजा और रानी दोनों प्रस्तुत होते थे, और कुछ रात हो गया था, कुछ तीर्थयात्री विश्राम करने के लिए उनका अतिथि गृह में रोके। वे एक परम श्रेष्ठ तीर्थ स्थान में भगवान को अत्यंत सुंदर चतुर्भुज रूप को दर्शन करके आए हैं, और परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप करते करते तब उन तीर्थयात्रियों जब वार्तालाप कर रहे थे, तब राजा का जो पुरोहित है उनका पास गया, पास जाने के बाद ये सारा चीज सुनने का मिला। जो पुरोहित है, पुरोहित मतलब ब्राह्मण है, उसने राजा के मंत्री को बतलाया और पुनः उसे मंत्री ने अपने राजा इंद्रदमन को बतलाया, महाराज कल रात को कुछ तीर्थयात्री भगवान के एक ऐसे विग्रह का गुणगान कर रहे थे जिनका जो कोई भी दर्शन करता है उनकी इस दुखमय संसार से मुक्ति हो जाता है और वो पुनः कभी इस प्राकृत जगत में नहीं लौटता है, वो वैकुंठ में चतुर्भुज रूप प्राप्त करके नारायण का परिकर बन जाता है। दर्शन करने की तो बात ही क्या, यदि कोई व्यक्ति साधारण रूप में भी यह संकल्प करता है कि मैं कल उनके दर्शन करने के लिए जाऊंगा, परंतु वहां के लिए यात्रा करने से पहले रात को ही उसके प्राण छूट भी जाए तो भी वह व्यक्ति चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। बाई चांस उन्होंने मन में सोचा मैं जगन्नाथपुरी जाना है, जगन्नाथ दर्शन करना, और नहीं गए जा पाया और शरीर से प्राण निकल गया, फिर भी उसका चतुर्भुज नारायण रूप होके वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। ये सुनकर आया और मंत्री का मुख से ऐसा सुनकर महाराज इंद्रदमन बहुत आनंद होकर उसे पूछने लगे। इसलिए यहाँ पे कि छोटी से गीत आता है उड़िया भाषा में, ये भक्त भावे हा कुजे करंती दर्शन कोटि कोटि जन्म पाप हुई बहन। जो भक्ति भाव से भगवान को दर्शन करता है उसका करोड़ों करोड़ों जन्म का पाप संपूर्ण नष्ट हो जाता है, करोड़ों करोड़ों पाप भक्ति से श्रद्धा का साथ है। दूसरा अर्थ में कहते हैं भगवान को एक बार प्रणाम श्रद्धा प्रेम और भक्ति के साथ प्रणाम करने मात्र से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। श्रद्धा और प्रेम और भक्ति के साथ प्रणाम करने मात्र से 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने वाले हो सकता है उसका पुनर्जन्म, लेकिन एक बार कृष्ण को श्रद्धा प्रेम और भक्ति के साथ प्रणाम करने मात्र से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इस प्रकार कहते हैं भक्ति भाव से जो दर्शन करता है उसका करोड़ करोड़ जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। से चतुर्धा मूर्ति को जेहु देखी नहीं, से चतुर्धा मूर्ति को जेहु देखी नहीं, सत्य पुण्य कले सेहु मुक्ति न मिलई। जिन्होंने ये चतुर्धा मूर्ति को कभी दर्शन नहीं किया, चतुर्धा मूर्ति कौन कौन है, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा और कौन है, सुदर्शन। इसलिए कहते हैं चतुर्धा मूर्ति को, चतुर्धा विग्रह को जब दर्शन नहीं होता है उसका सत्य पुण्य और जितना भी पुण्य कर्म, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं भी पुण्य कर रहा हूँ, मैं भी धर्म कर रहा हूँ। इसकन में आते हैं, पहले हम लोग जब वृंदावन में रहते हैं जब बताते हैं बोलते मैं भी धर्म कर रहा हूँ। अरे धर्म क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म, धर्म क्या है, धर्म वो भगवान ने जो बोला इसको पालन करना वो धर्म। लेकिन संसार में प्रत्येक व्यक्ति अधर्म करता है, जन्म से लेकर लास्ट तक अधर्म है और प्रत्येक व्यक्ति अधर्म ही करता है। क्या अधर्म है, भागवत में प्रमाण है, द्युतम पानम स्त्री अशोना जत्र अधर्म चतुर्विधा, ये चार अधर्म है, द्युत क्रीड़ा, द्युतम पानम नशा और पर स्त्री पर पुरुष गमन, और चौथा क्या है, नान भेष। ये क्या है, अधर्म कर रहा है, ये चीज करता है और बोलता है मैं धर्म कर रहा हूं। कितना भी धर्म करो कौन सा धर्म में आ जाएगा, ये चार चीज को पहले त्याग करो। ये मनुष्य के लिए वर्जित है, पहले मनुष्य के लिए वर्जित है, पहले धर्म का पैर में कदम रखने के लिए पहले मनुष्य के लिए ननभेज वर्जित है। बहुत सारा संसार का लोग ननभेज खाते रहते हैं, जिंदगी में भी कभी भी ननभेज को टच नहीं करना चाहिए। एक इसका ऊपर एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ, कुछ नया लोग बैठे है, हमारे इस्कन का भक्त लोग तो नहीं कर रहा है लेकिन कुछ नया लोग है उनको ऐसा लगेगा, क्लियर बता दे रहा हूँ इसका बारे में, आप लोग भी प्रचार भी कर सकते हैं। मनुष्य के लिए पहले वर्जित है, शास्त्र में पूरा वर्णन है कैसा, एक ही आप लोग रास्ता में जा रहा है कि मुर्दा पड़ा है, एक ही मुर्दा को टच हो गया, टच होने के बाद मन में अपवित्र आता है, अपवित्र आने के बाद क्या करना पड़ता है, हाँ जी, ये भारतीय कल्चर है, भारत में, विदेश में नहीं है, विदेश में सब कुछ चलता है लेकिन भारत में कल्चर है कि मुर्दा को टच करने मात्र से हमको स्नान करना पड़ता है, और एक मुर्दा को टच करने के बाद स्नान करना पड़ता है, एक मुर्दा को काट के मुख में डाल के पेट में बैलेंस करे, धर्म कर रहा है, धर्म कर रहा है, हाँ जी जोर से बोलिए, बोलते वो सारा संसार के लोग बोलते धर्म कर रहा हूं, पाप कर रहा है पुण्य कर रहा है, मनुष्य हो पशु हो, एक ही प्रकार के पशु है। इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंट एनिमल, हम एक ही प्रकार के बुद्धिमान जानवर है जिसको टच करने मात्र से हमको स्नान करना पड़ता है। और मनुष्य के लिए पहले वर्जित है नॉन वेज, बहुत सारे लोग खाते हैं और बोलते हैं मैं धर्म कर रहा हूं। मनुष्य के अंदर चार चीज नहीं है जो कि मनुष्य के लिए नॉन वेज खाने का, चार चीज नहीं है। क्या क्या नहीं है? मनुष्य कभी जिह्वा से पानी नहीं पीता है। जो जीव जिह्वा से पानी पीता है उसका खाद्य है नॉन वेज। चार श्वान दांत नहीं होता है, तीक्ष्ण दांत, सामने में चार दांत आएगा जिसको फाड़ कर खाएगा। और क्या है? अंधेरा में देखेगा, हर जीव अंधेरा में नहीं देख सकते हैं, कुत्ता बिल्ली शेर ये सब अंधेरा में देखते हैं। और ये कि पेट के अंदर एक एसिडी होता है जो एसिडी इसी नॉनवेज को पचाता है। ये मनुष्य के अंदर ये चारों को चारों चीज ही नहीं है। फिर हर पशु में भी नहीं है और हर पशु भी नहीं खाता है। मैंने जब गया था महाराष्ट्र, नहीं महाराष्ट्र बोल रहा हूँ, गया था पंजाब, पंजाब का साइड में गया था ट्रेन में। ट्रेन में जाने के बाद वहां पे एक प्रवचन दिया, प्रवचन देने के बाद एक व्यक्ति ने बताया, बोला बच्चे को नॉनवेज नहीं खिलाएंगे, बच्चे का एनर्जी कहां से पड़ेगा। बोला अच्छा, आप बोलते हमें मनुष्य है, किस प्रकार के मनुष्य है? हर पशु भी नहीं खाता है नॉनवेज। कितने पशु का नाम बताऊं? एक दो नहीं, कितने पशु का नाम बताऊं? सबसे मोटा तगड़ा पशु किसको मानते हैं? हाथी को। खाता है कभी नॉनवेज? खाता है कभी? सुना कभी? तब गाय, बैल, बकरी, घोड़ा, तब फिर आप बोलते हैं हम मनुष्य है, किस प्रकार के मनुष्य है? समझ में आ गया? तो पशु भी नहीं खाता है, भगवान पशु शरीर दिए। फिर आप बोलते हैं मनुष्य, मनुष्य का शरीर जो मिला है सत्व गुणी में रहने के लिए और सत्व की चीज खाने के लिए। ये है रियल धर्म है। पहले नियम है नॉनवेज को त्याग करो, मनुष्य के लिए पहले वर्जित है। हर व्यक्ति बोलता है मैं धर्म करता हूं, अधर्म कैसा करना है ये? तब एक बार जाके जगन्नाथ को दर्शन हो जाता है, तब सत्य पुण्य कले है मुक्ति ना मिलेगी। जब तक दर्शन नहीं होता है तब मुक्ति क्या मिलेगा? तो मंत्री के मुख से ऐसा सुनकर महाराज इंद्रद्युम्न बहुत आनंदित होकर उसे पूछने लगे, उन विग्रह का नाम क्या है? उन विग्रह का नाम क्या है तथा वे किस स्थान पर विराजमान है? मैं अभी अपनी पत्नी और संपूर्ण प्रजा के साथ उनको दर्शन करना जाऊंगा। मंत्री ने कहा, महाराज भगवान के उस शिव विग्रह का नाम नीलमाधव है, किंतु मुझे यह नहीं पता कि वो कहां पर विराजमान है। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, तुम शीघ्रता पूर्वक जाके तीर्थराज यात्री जो है उनको पता लगाओ, उनसे पूछो शिव विग्रह कहां पर विराजमान है। मंत्री के मुख से भगवान नीलमाधव की ऐसा अद्भुत महिमा सुनकर राजा का हृदय में नीलमाधव का विग्रह का प्रति दर्शन करने के लिए और उत्कंठा बढ़ गई। मन ही मन सोचने लगे, किस प्रकार नीलमाधव का दर्शन प्राप्त कर पाऊंगा? वो ये कहां विराजमान है? क्या तीर्थयात्री हमें भगवान नीलमाधव का विषय में बताएंगे? महाराज इंद्रद्युम्न इस प्रकार के अनेक अनेक चिंता में व्यतिव्यस्त हो गए, अधीर हो गए। और उन मंत्री, उन तीर्थयात्रियों का वासस्थान तो जब मंत्री को भेजा गया था वहां पे, तब मंत्री जाकर उसी वासस्थान में देखा तो उसने आसपास में अन्य तीर्थयात्री यात्रियों से सुना कि वे तीर्थयात्री तो रात को वहां से चले गए। उसने आकर सारा संवाद महाराजा इंद्रद्युम्न को बताया, मंत्री ने आके राजा को सब कुछ सुनाया। मंत्री के मुख से संवाद सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वयं ही भगवान नीलमाधव का विग्रह को ढूंढने का निश्चय किया। राजा इंद्रद्युम्न ने अनेक पुरोहित विद्वान, पुरोहित के जो विद्वान था उनका भाई को, का नाम है विद्यापति, नाम याद रखिए विद्यापति, तथा उनके अन्य कर्मचारी और सेनापति को बुलाकर उन्हें विभिन्न दिशाओं में जाकर विग्रह को ढूंढने का आदेश देते हुए कहा, तुमसे कुछ व्यक्ति पूर्व दिशा में जाएं और कुछ पश्चिम दिशा में और कुछ दक्षिण और कुछ उत्तर दिशा में जाकर पता लगाओ, और जिसको पता चला जाए वो आके मेरा को बता दे तब उनको बहुत पुरस्कार दिया जाएगा। जो आके बता देगा उनको पुरस्कार राजा का जो पुरस्कार और कितना भारी पुरस्कार होगा ये सोच लीजिए। तब लेकिन उनका टाइम ही रखा गया कितना दिन के अंदर, जैसा भाई चंद से यहाँ पे कोई क्रिकेट होता है इतना बॉल के अंदर आपको होना चाहिए, इसी प्रकार उनका टाइम ही रखा गया, चारों दिशा में चारों भेज दिया गया लेकिन टाइम ही रखा गया कितना दिन, 3 महीना। 3 महीना का अंदर आपको पता लगाना है, 3 महीने का अंदर आपको पता नहीं लगाएंगे तो फिर आपको फेल है, और 3 महीने का अंदर आपको पता लगा दिया तो सही है। तब उनको टाइम ही रखा गया, जो भी व्यक्ति निर्वाद का विग्रह के विषय में मुझे सूचित करेगा वो अपार धन संपत्ति और उच्च पद का अधिकारी होगा। राजा इंद्रदुम्न के इस प्रकार के वचन सुनने का उपरांत 26 कर्मचारियों ने उच्चायित होकर विभिन्न दिशा में प्रस्थान किया, लेकिन सुकुमार सुंदर और सभी सद्गुण में युक्त विद्यापति ने पूर्व दिशा की तरफ से गया। उज्जैन से पूर्व दिशा के साइड होता है जगन्नाथपुरी, तब उज्जैन से पूर्व दिशा की तरफ विद्यापति ने चालू किया। इधर 3 महीने का बाद विद्यापति अतिरिक्त और सभी कर्मचारी सेनापति असफल होके वापस आके और राजा को बताए हमको नहीं मिला, 3 दिशा से वापस आ गए। लेकिन राजा ने बहुत चिंता सताने लगे, एक तो भगवान नीलमाधव का कुछ पता ही नहीं है, दूसरा है विद्यापति का विषय में कुछ सूचना नहीं, कोई फोन नहीं था जो कि फोन कर दें हमारा पत्नी उधर है कि हमारा पति उधर है कि भगवान का मंदिर पाया हो क्या, कोई व्हाट्सअप नहीं था कि हाँ कोई ईमेल करने के लिए कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं वो टाइम, तब कोई संवाद नहीं, इस विषय में बतलाने में भी कोई नहीं भी था। उधर विद्यापति हिंद सागर के समीप पूर्व भारत वर्ष के पूर्व तट पर नीलमाधव के शिव विग्रह को ढूंढने का भरसक प्रयास करते हुए निरंतर भ्रमण करते करते एक दिन महासागर के तट पर उन्होंने एक अत्यंत सुंदर गांव वहां पहुंच गए। वहां एक हरा भरा पर्वत था, बहुत बड़ा पर्वत, और फूल पेड़ में लदे हुए बहुत अच्छा अच्छा फूल फल। गांव के सभी निवासी अत्यंत सभ्य थे क्योंकि विद्यापति चलते चलते उसी गांव पे जब प्रवेश किया उसी टाइम पे संध्या हो गया था, शाम का समय हो गया था, और संध्या का समय पे और कहाँ जाना उनको अच्छा नहीं लगा, कहाँ जाऊंगा और फिर संध्या समय पे कहाँ रुकूंगा, ये गांव तो अच्छा लग रहा है इसी गांव पे रुक जाता हूँ रात को। तो विद्यापति ने उसी गांव पे विश्राम करने के लिए निश्चय किया, वहां से निवासियों जितने सब अलग अलग गांव का सब लोग थे सबको पूछा थोड़े आज रात के लिए थोड़ा विश्राम करने के लिए किसी का घर बारंडा जो भी है कुछ दे दीजिएगा। तब विद्यापति जब पूछा तब सब लोग उनको उत्तर दिया, गांव में एक ही प्रधान व्यक्ति है उनका नाम है विश्वावसु, और जात में क्या है सवर है, जात में सवर है, और लेकिन विद्यापति जात में क्या है ब्राह्मण है, यही है रहस्य, अभी आप आगे आगे आप समझ पाएंगे। तो विश्वावसु सवर है और सवर जाति होने के पर भी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के विद्वान विनम्र और उदार चरित्र के व्यक्ति है। उस गांव में जब भी कोई यात्री आता है उन्हीं के घर पे रुकती है, सब उनके घर पर ठहरते हैं और निःसंकोच होते हैं आप उनके घर पे चला जाइए और उनका घर में सब व्यवस्था हो जाएगा। जब विद्यापति ने विश्वावसी के घर पर पहुंचा तब पहुंचने के बाद वहां पे क्या किया, दरवाजा का टुकराया, दरवाजा टुकराने के बाद तब विश्वावसी के 16 साल की वर्ष सुंदरी पुत्री ललिता ने दरवाजे को खोलकर कहा, इस समय मेरे पिताजी बाहर गए हैं परंतु लौटते ही वे आपके ठहरने से सारा व्यवस्था कर देंगे, कृपया आप घर के बाहर प्रतीक्षा करें। उसी टाइम पे कोई कॉलिंग बेल नहीं था, तब इसीलिए उन्होंने घर का दरवाजे का टुकराया। श्री श्री गौर निताय राधा गिरिधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणे भक्त रखे सुदर्शन चक्र की जय हो। जब जब हनुमान जी लंका गए थे, लंका को चार तरफ घूम कर आए, घूम कर आने के बाद एक ही घर का सामने खड़ा हुए। किसका घर? किसका घर? विभीषण का घर था। और विभीषण का घर का सामने दरवाजे का आवाज ऐसा ही दिया, और दरवाजा का आवाज दिया तो विभीषण भी घर का अंदर बैठ कर क्या कर रहे थे? प्रभु राम का नाम जप रहे थे, और सुबह का समय था। और हनुमान जी भी ऐसा आवाज लगाया, कोई मोबाइल वोबाइल नहीं था जो कि व्हाट्सएप में भेज दे तब फिर विभीषण भी आश्चर्य हो गया, सुबह सुबह कौन आकर मेरा डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद विभीषण और हनुमान जी वार्तालाप हुआ। ये कहने का अर्थ है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है घर पे मंगल हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है घर पे मंगल हो जाए। मंगल आरती में भाग लो तो मंगल होगा, और घर का अंदर भगवान का तस्वीर रखते रख के आप भगवान का पूजा करते हो, सुबह उठ के सूर्य उगने का पहले उठ के भगवान का आरती करते हो तब मंगल होगा, नहीं तो भगवान का नाम सुबह उठ के भगवान का नाम जपते हो तब जाके मंगल होगा। मंगलमय कर्म करोगे तब मंगल होगा, नहीं तो सारा संसार में अमंगल अमंगल में है। सर बाहर व्यक्ति बोलता है मैं मंगल कर रहा हूँ मंगल कर रहा हूँ, घर का अंदर उठ के पहले ये अगरबत्ती चालू नहीं करके ये अगरबत्ती चालू करेगा मंगल होगा? सुबह उठ के पहले अगरबत्ती चालू करना चाहिए। मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था तब ट्रेन में मैं बैठा, क्यों हम लोग का ये होता है 3 बजे उठ जाना, 3 बजे उठ के स्नान सोच करके अपना माला लेके बैठ जगह जप करना। मैं बैठ के जप कर रहा हूँ और मेरा साथ में एक व्यक्ति बैठा था, तो सुबह सुबह उठ के क्या कर रहा है? बीड़ी फूक रहा है। मैं बोला क्या हो रहा है? ना हवन हो रहा है, मंत्र कहाँ से? ना अंदर से मंत्र, बाहर से धुआं। सुबह का समय पे मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ बात करना और श्रद्धालु लोग को कोई भी ज्ञान नहीं देना, ये एक प्रकार की अपराध है। इसलिए हमें उनसे बच कर रहना चाहिए। सुबह का टाइम था इसलिए मैं अपना माला किया। सुबह का टाइम पे क्या होना चाहिए मालूम होना चाहिए, सुबह समय बहुत महत्वपूर्ण है। वृंदावन में जब आते हैं तब हर व्यक्ति को इस प्रकार समझाता हूँ सुबह का टाइम पे क्या करना चाहिए। सुबह का टाइम पे कभी वृंदावन में जाकर सोना नहीं चाहिए, सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। और घर पे भी फिर भी आप लोग घर पे भी सुबह का टाइम पे सूर्य उगने का पहले व्यक्ति जागना चाहिए। सूर्य उगने का पहले व्यक्ति नहीं जागता है, सूर्य देव ने इसको आयु को घटा देते हैं। हर व्यक्ति का आयु घटने का तरीका है, सूर्य देव का डिपार्टमेंट है आयु को घटाता है। इसलिए सूर्य उगने का पहले व्यक्ति को जागना चाहिए, जाके प्रभु का दर्शन करें, मंगल होगा कल्याण होगा ये जानना चाहिए। लेकिन रोग को रात को 12 बजे सोएंगे, जागेंगे कितना बजे? 12 बजे। कितना घंटा सो जाए? 12 घंटा सो गए, मतलब अपना जीवन का आधा जीवन सो गए, जान लेना चाहिए। तो यहाँ पे विद्यापति ने प्रतिज्ञा किया, किसको प्रतिज्ञा किया? विश्वावसु को। इसलिए कहते हैं कभी भी माताओं लोग अकेला रहते हैं, बाई चांस कभी भी अकेली है, तब दरवाजे में कोई भी आ गया तब उनको बाहर पे बैठने के लिए आसन दे देना चाहिए अंदर में प्रवेश करने का पहले, क्योंकि इस प्रकार ये पहले संस्कार था ये सब कुछ। इसलिए ललिता ने सीधा बोले 16 साल की, इसलिए उनको बोला है आप थोड़ी से समय प्रतीक्षा कीजिए, और प्रतीक्षा किया। प्रतीक्षा करने का बाद है कुछ समय का बाद विश्वावसु घर लौटे, उनके देह से बहुत मधुर सुगंध आ रहे थे। किसका शरीर से? विश्वावसु का शरीर से बहुत सुगंध आ रही थी। उनके लाट पर सुगंधित सुंदर तिलक था। अतित को घर के बाहर प्रतीक्षा करते देखकर वो लज्जित होकर बोले, ओहो देर से आने के लिए मुझे क्षमा करने का, कृपया आप भीतर आइए। विश्वावसु और उनके पुत्री अतित को घर पे भीतर ले आए। विद्यापति का मनोहर रूप और सौम्य स्वभाव को देखकर विश्वावसु बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने विद्यापति को कहा, यदि आप चाहे तो यहाँ कुछ दिन ठहर सकते हैं। विश्वावसु ने क्या कहा? विद्यापति को कहा आप थोड़ी दिन यहाँ पे रुक सकते हैं। फिर उन्होंने अपने पुत्री ललिता से कहा, इस ब्राह्मण का आदर सत्कार करो, जो कुछ चाहते हैं खाने पीने का व्यवस्था करो और अन्य आवश्यकता को ध्यान रखो। कोई भी कुछ जरूरत होता है तो आप उनका सेवा जरूर कीजिए। इन्हें यहाँ विश्वावसु इतना ही ललिता को कह के फिर घर से निकल गए। निकलने का बाद ललिता ने सारा सेवा किया, आसन बिछाया, जो भी पकवान बनाया था भोजन खिलाया। खिलाने का बाद विद्यापति भोजन करने का बाद क्या होता है, भोजन का बाद शयन, इसीलिए कहते हैं पहले भजन, पहले भजन पहले भोजन नहीं है कि अभी का संसार में लोग तो पहले भोजन बाद में भजन, पहले भजन इसका बाद है भोजन, इसका बाद शयन, इसका बाद शयन का बाद है इमीडिएटली अध्ययन। शयन का बाद आप उठ के पढ़ते हो, आपका दिमाग का अंदर रहेगा, ये दिमाग जो है ये कि कंप्यूटर है, इसके अंदर सब कुछ रहता है, याद याद रखने का टाइमिंग है शयन का, इमीडिएटली उठ के पढ़ना चाहिए। इसलिए बच्चे लोग जब स्कूल पढ़ाई करते, जब एग्जाम आता है कितना बजे पढ़ते हैं, सुबह का 3 बजे उठ के, एग्जाम जब आता है कितना बजे उठ के पढ़ते हैं पूरा एग्जाम का टाइम पे, ये सुबह उठ के। इसलिए कहते हैं पहले भजन, भोजन, शयन, अध्ययन। तब विद्यापति भोजन करने का बाद विश्राम किए। विद्यापति जब विश्वावसु का प्रतीक्षा करते हुए उनके घर के बाहर बैठे थे, तभी उन्हें उसी घर पे एक मनमोहक सुगंध आ रही थी। और विशेषतः विश्वावसु के घर लौटने पर वो सुगंध और भी अधिक बढ़ गया। विद्यापति जब घर का बाहर बैठे थे, थोड़ा थोड़ा खुशबू आ रहा था, जब विश्वावसु घर के अंदर आए और ज्यादा सुगंध फैल गया। तब सुगंध फैलने का नाते तब विद्यापति आश्चर्य हो रहा है और मन में सोच रहा है, ये खुशबू तो यहाँ का खुशबू नहीं, हो सकता ये गोलोक का खुशबू है। और वो ऐसा सुगंध को आग्रहण किया और सोचा ये कभी भी मेरा जिंदगी में ऐसा भी सुगंध, मेरा जीवन में ऐसा आग्रहण नहीं किया, ये अपना मन से सोच रहा है विद्यापति। मैं अपने अपूर्ण जीवन में ऐसे मधुर गंध का कभी भी अनुभव नहीं किया, मुझे यहाँ कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये जो प्रतीक्षा शब्द बारंबार आ रहा है, इसलिए भक्त के लिए 3 चीज हमेशा जीवन में आएगा, एक है प्रतीक्षा, एक है परीक्षा और एक ही समीक्षा। भक्त के लिए प्रतीक्षा, आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान जरूर मिलेंगे, भगवान अपना वचन दिए हैं, भगवान जरूर मिलेंगे और भगवान अपना धाम को लेकर भी जाएंगे। भगवान भक्त वत्सलता है, लेकिन भगवान जो आदेश दिए उसको पालन करो और जरूर पालन करने का नाते और भगवान जरूर मिलेंगे, क्योंकि गुरु का आदेश दिए है आपको, भगवान का नाम करो और भगवान मिलेंगे। सही, यस और नो? आवाज नहीं आ रहा है? हमारा वृंदावन होगा ना, वृंदावन में पूरा राधे राधे बोल के पूरा दरवाजा को ऐसा ऊटपटा कर देते हैं। आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है, हो सकता है बॉम्बे में कुछ खाने पीने में कमी है, लेकिन वृंदावन में सुबह से शाम तक लस्सी मिलता है। इसीलिए प्रतीक्षा, भगवान का भक्ति में बहुत सारा चीज आएगा, इसलिए प्रतीक्षा। इसलिए शबरी ने, शबरी का गुरु ने बोला था, क्या बोला, भगवान आएंगे। शबरी कितने साल प्रतीक्षा किया और भगवान आए, फिर अकेला नहीं आए, कौन कौन आए, 2 आए, राम और लक्ष्मण। और क्या खाए और कैसा बैर था, झूठा बैर। आप सोचो भगवान कितने व्याकुल का साथ है, झूठा बैर भक्त का हाथ से खाते हैं। तब प्रतीक्षा और परीक्षा प्रहलाद महाराज के लिए, परीक्षा आएगा जीवन में, बहुत सारा परीक्षा आएगा। बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, फिर थोड़ा दिन माला करते हैं, माला थोड़ी दिन करने के बाद बोलते हैं क्या मन नहीं लग रहा है, फिर और थोड़ी कुछ परेशानी, परिवार का परेशानी, कुछ व्यापार में परेशानी आ गया, कभी पति पत्नी का अंदर झगड़ा हो गया, कुछ परेशानी आ गया, तो वो अपना भक्ति को छोड़ देते हैं। अरे ये भगवान आपके लिए परीक्षा ले रहा है। प्रहलाद महाराज इतने बड़े महान भक्त है जो कि गर्भ का अंदर रह के परीक्षा हुआ था,
गर्भ के अंदर परीक्षा से बाहर निकले फिर भी परीक्षा है, लास्ट तक उनको परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ा। और उन्हीं का परीक्षा में उत्तीर्ण होकर भगवान उन्हीं के लिए, भगवान स्वयं उनका वचन, भक्त का वचन को सत्य करने के लिए भगवान स्वयं, भगवान भक्त का वचन को सत्य करने के लिए खंभे का अंदर आना पड़ा। सत्यम विधातुम निज भूत्य भाषितम व्याप्तिम जखेड़े से भूत आत्मन अदुर्शक्ताय अद्भुतम रूप महान स्तंभे संभाय न मृगम न राजन। भगवान स्वयं प्रकट हुए खंभे का अंदर, ये वचन को, भक्त का वचन को प्रकट सत्य करने के लिए, और हनुमान जी का वचन को सत्य करने के लिए किसमें आना पड़ा, छाती में। इसलिए परीक्षा आएगा, ये परीक्षा में आपको उतरना है ना है, आपको पास करना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, कितना भी कष्ट आ जाए आपको परीक्षा आएगा। परीक्षा में आप जो संकल्प लिया, भक्त जब संकल्प लेता है ये संकल्प को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। भक्त संकल्प लेता है कब लेता है, जब गुरु दीक्षा देता है उसी टाइम में संकल्प होता है। क्या संकल्प होता है, चार नियम से दूर रहना है, 10 अपराध से दूर रहना है, और कितना माला करना है, 16 माला करना है, 16 माला करना है रेगुलर। तब प्रतीक्षा परीक्षा हो गया, इसके बाद समीक्षा आत्मचिंतन, खुद का बारे में जानो पहले आप हे कौन, ये समीक्षा। तब विद्यापति ने उनका घर पे कुछ दिन प्रतिज्ञा करने चाहिए उन्होंने मन में सोचे और रहे भी, संभवतः मुझे निर्मात का विषय में कुछ पता चला जाए, यह सोचकर वो कुछ दिन तक वहीं रहकर आसपास में विभिन्न स्थान पर थोड़ा ढूंढने, थोड़े थोड़े ढूंढने लगे। कुछ दिन तक विद्यापति निरंतर सेवा करते करते ललिता के साथ प्रीति हो गए, क्योंकि घर पे पिताजी नहीं रहते हैं, तब 16 साल की लाली है, वृंदावन भाषा में लाली बोलते हैं, 16 साल की लाली है, तब हिंदी में बोलते हैं बेटी है, 16 साल की बेटी। तो उन्हीं का साथ है विद्यापति का प्रीति हो गया, प्रीति मतलब इंग्लिश में लव बोलते, इंग्लिश में बोलते लव, लव एक ही जगह पे लगता है श्री कृष्ण के पास, और संसार में हर व्यक्ति बोलता है आई लव यू नहीं होता है आई लॉस्ट यू, लव एक ही जगह पे भगवान के पास, भगवान को प्रेम करना है, वो प्रेम कभी टूटता नहीं, वो प्रेम कभी टूटता नहीं, और संसार में जितना हम जिसको प्रेम कर रहे हैं वो प्रेम अटूटा है, टूट जाता है। इसलिए यहाँ पे विद्यापति भी और ललिता के साथ प्रीति हो गई, और विद्यापति भी उससे घनिष्ठता बढ़ने लगी, और धीरे धीरे उन दोनों की घनिष्ठता प्रेम में परिणत हो गई। ललिता का प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण विवाह होने पर भी विद्यापति ने विश्वावसी के ललित के साथ विवाह की अनुमति मांगी। ऐसा नहीं डायरेक्ट को भी विद्यापति, ऐसा नहीं कि ललिता को उठाकर भाग नहीं गई, ये समझना चाहिए, ये संस्कार है। पिता से पूछा, ललिता का पिता, पिता का नाम क्या है, विश्वावसु, विश्वावसु से विद्यापति पूछा, मेरा इच्छा हो रहा है आपका बेटी के साथ शादी करने के लिए। तो पूछा, तब विश्वाभसु जात में सवर है, अब ब्राह्मण का दामाता मिल रहा है, कोई छोड़ेगा? जात में ब्राह्मण है, हाँ विद्यापति ब्राह्मण है, ब्राह्मण का दामाता मिले है, तब उसमें आग्रह हो गए और दोनों का शादी हो गया। विश्वाभसु का पुत्री ललिता का साथ किसका साथ शादी हुआ, विद्यापति। विश्वाभसु प्रतिदिन बाहर जाते थे, संध्या काल में लौटने पर भी प्रसन्नचित होते थे, और उनकी देह से एक अद्भुत सुगंध आती थी। एक दिन विद्यापति ने एकांत में ललिता से कहा, प्रिय अब तुम मेरी पत्नी हो गए और मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं, और वह विचित्र सुगंध कहाँ से आती है, पिताजी जब घर में आते हैं सुगंध बहुत बढ़ जाता है, और पिताजी हर दिन सुबह जाते हैं तो शाम को कहाँ से आते हैं? कोई जैसे फैक्ट्री में जाते हैं क्या कि ऑफिस में जाते हैं क्या? तब विद्यापति अपना पत्नी को पूछ रहे हैं। ललिता ने उत्तर दिया, मैं नहीं बता सकती हूँ, मेरे पिताजी की आज्ञा है, यह रहस्य किसी को भी नहीं बताऊं, यह अत्यंत गोपनीय है। इसीलिए कभी भी कोई भी सीक्रेट चीज होता है ना, कभी लेडीज को नहीं बताना चाहिए। आप लोग के लिए कम से कम समझ लीजिए प्रभु लोग के लिए ये बहुत गहरा की बात है। कभी भी गुप्त रहस्य, गुप्त कथा कभी भी माताओं लोग को नहीं बताना चाहिए। माताओं लोग के अंदर ये चीज गुप्त चीज सीक्रेट नहीं रख पाता है, इमिडिएटली ओपन हो जाता है, इमिडिएटली ओपन हो जाता है। माता लोग बहुत हंस रहे हैं क्यों पता नहीं जो भी है। और तब विद्यापति ने कहा, क्या तुम मुझे भी नहीं बता सकते हो? तुम मेरे अर्धांगिनी हो। अच्छा, इसे समझ में आ रहा है ना, पत्नी पति का अर्धांगिनी माना जाता है, पति का पत्नी अर्धांगिनी। अर्धांगिनी शब्द तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आप लोग को थोड़ा समझ जाना चाहिए किस प्रकार अर्धांगिनी होने से क्या क्या मिलता है। पति का पुण्य, पति ने जितना पुण्य करेगा पत्नी को इसका आधा मिलता है, लेकिन पति पत्नी पति का सही से सेवा करने से, ऐसा नहीं थापड़ मार के सेवा करें, पति का अच्छा से सेवा करें, उसको पैर दबाएं, सुबह जाने का टाइम पे मीठा से बोले, आने का टाइम पे मीठा सा बोले, और मीठा से बोलते हुए पानी पिलाएं, सोने का पहले पति के लिए सज्जा बिछाएं, नहीं तो ऐसा पहले तो खुद सो जाते हैं। और इसका खाने का पहले नहीं खाना चाहिए, और पहले खाने का पहले खाया उसका उम्र घटता है। और कभी भी माताओं लोग कभी भी शेर का बाल नहीं काटना चाहिए, मैं कड़क बोलता हूँ वृंदावन में, जितने माताओं लोग यहाँ पे वृंदावन में मेरा कथा सुने हैं तो बहुत जानते हैं जो भी है, लेकिन माताओं लोग के लिए बहुत ये संस्कार है, क्योंकि कभी भी एक ही जो केश होता है केश को काटता है तो पति का उम्र को घटाती है, इसलिए माताओं लोग कभी भी सिर का बाल को नहीं काटना चाहिए। अर्धांगिनी का अर्थ होता है पति का आधा पुण्य पत्नी को मिलता है, और पति का एक ही भी पाप कुछ नहीं मिलेगा, पति का कुछ भी पाप उनको नहीं मिलेगा, लेकिन पत्नी का उल्टा, पत्नी का पुण्य पति को कुछ नहीं मिलेगा, पत्नी का आधा पाप पति को मिलेगा, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए सोच समझ के गृहस्थ बनो, गृहस्थ का धर्म को अच्छा से निभाओ, इसलिए कहा जाता है पत्नी को पति का अंडर पे रहने के लिए, लेकिन अभी का टाइम पे इसलिए कहते हैं वृंदावन में आप जाते हो तो वृंदावन में सभी पेड़ कैसा है, सारा पेड़ कैसा है, झुंके हुए, इसलिए माताओं लोग को हमेशा के लिए पति का पास झुंक कर रहना चाहिए और पति का सेवा में, क्योंकि पति उनका भगवान है। पति क्या है? भगवान। पति देव कहा जाता है, पति देव कहा जाता है। अर्धांगिनी उसका आधा फल, इसलिए विद्यापति ने कहा तुम मेरा अर्धांगिनी हो तब, और आप और मेरे में भिन्न क्या है? अभिन्न हो, मैं तुम्हारा पति हूं, इस कारण हमारे बीच कोई गोपनीय रहस्य नहीं रहना चाहिए। ललिता ने कहा आप मुझे वचन दीजिए इसी रहस्य को किसी का सामने प्रकट नहीं करना। विद्यापति को उत्तर दिया, विद्यापति ने उत्तर दिया ठीक है मैं किसको नहीं बताऊंगा, पत्नी को इस प्रकार पति पर संदेह नहीं करना चाहिए, पत्नी को भी पति का ऊपर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, मैं जानता हूं कि तुम एक ही पतिव्रता स्त्री हो, एक ही पतिव्रता स्त्री हो। इसमें क्या क्या सार्थक होता है पतिव्रता स्त्री होने का बात, इस कहते हैं धन तभी सार्थक है जब धर्म के साथ हो, जब धन सार्थक होगा जब धर्म भी साथ हो। संसार में बोलते मैं धर्म कर रहा हूं, धर्म करोगे तो धन आएगा, धन से धर्म को खरीदी नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है? नहीं हो सकता है, धर्म करोगे तो धन ऑटोमेटिक आएगा। इसलिए मैंने आज सुबह लेक्चर देने के लिए गया था यहाँ पे कहाँ पे बहिंदर, वहां पे बता रहा था संसार का लोग, सारा संसार का लोग लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं। लक्ष्मी के पीछे भागने के नाते लक्ष्मी किसके पीछे भाग रहे हैं बताइए? आप लोग का पीछे भाग रहे हैं? आप लोग इतने सुबह से शाम तक धन का पीछे भाग रहे हैं? धन किसका पीछे नहीं भागता है, धन एक ही का पीछे, किसका पीछे? नारायण का पीछे। और धन कभी किसी को सुख नहीं देता है, सारा संसार का लोग को किसी को भी सुख नहीं देता है, धन से कभी सुखी नहीं बन सकता व्यक्ति। बहुत सारे लोग बोलते हैं धन नहीं तो कैसा काम चलेगा, सारा कुछ काम होगा और होता भी रहा है और हो रहा है भी। देखिए धन कमाने का तरीका होता है और धन कैसा आएगा ये अपना कर्म का अनुसार आ रहा है। हम प्रयास करने का जरूरत नहीं है, जितना प्रयास करना है इतना करो, ज्यादा नहीं। रात को 12-12 बजे, दो एक बजे तक, 2 बजे तक कुछ ना कुछ नौकरी करते रहो धन कमाने के लिए। क्या है, भगवान ने ये शरीर दिए एक उद्देश्य के लिए, प्रभु का भक्ति करने के लिए। सिंपल है प्रभु का भक्ति। इसलिए धन तभी सार्थक है जब धर्म भी साथ हो, विशिष्टता तभी सार्थक है जब शिष्टता भी साथ हो, सुंदरता तभी सार्थक है जब चरित्र भी शुद्ध हो, संपत्ति तभी सार्थक है जब स्वार्थ भी अच्छा हो, देवस्थान गमन तभी सार्थक है जब हृदय में भाव हो, अच्छा व्यापार तभी सार्थक है जब व्यवहार भी अच्छा हो, विद्वता तभी सार्थक है जब सरलता भी साथ हो, प्रसिद्धि तभी सार्थक है जब मन में निरहंकारिता हो, बुद्धिमता तभी सार्थक है जब विवेक भी साथ हो, दोस्ती का होना तभी सार्थक है जब उसमें प्यार और विश्वास हो, तब सार्थक है। तब यहाँ पे पतिव्रता स्त्री का बारे में ये कहा गया है। अतः ये बात तुम्हें मुझे अवश्य बतलानी चाहिए, यह कहकर विद्यापति मौन हो गए। जब ललिता बोले अच्छा मैं आपको बतला रही हूं, मेरे पिताजी भगवान के एक श्री मूर्ति का अर्चन पूजन करने के लिए जाते हैं, ललिता ने बोल दिया। विद्यापति ने पूछा कौन सी श्री मूर्ति? ललिता ने कहा मैंने अपने पिताजी को इस रहस्य का प्रकट न करने का वचन दिया था, परंतु आप मेरे पति हो इसलिए मैं आपको बतला रही हूं। भगवान नीलमाधव को पूजा करने के लिए जाते हैं। भगवान श्री नीलमाधव की। तो विद्यापति को आवाज तो मिल गया, दर्शन तो दूर की बात है, कम से कम पता तो लग गया भगवान यहाँ पे है। तो विद्यापति ने पूछा कौन सा मूर्ति? तो ललिता ने बता दिया नीलमाधव की पूजा। यह सुनकर विद्यापति अत्यंत प्रसन्न हो गए और सोचने लगे अत्यंत इतने समय के बाद मुझे नीलमाधव का मधुर नाम सुनने का मिला है, नीलमाधव अवश्य ही कहीं आसपास में होंगे, भगवान का जो मधुर का नाम है। इसलिए कहते हैं अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयन मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमन मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरित मधुरम वसन मधुरम बलित मधुरम चलित मधुरम भ्रमित मधुरम मधुराधिपते रखिल मधुरम वेणु मधुरा रेणु मधुरा पाणी मधुरा पाद मधुरा नृत्य मधुरम साख्या मधुरम मधुराधिपते खिल मधुरम गीता मधुरम पीता मधुरम भुक्ता मधुरम सुप्ता मधुरम रूपा मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम करण मधुरम करण मधुरम हरण मधुरम मर्मण मधुरम वमिता मधुरम समिता मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम।
कुंजा मधुरा माला मधुरा जमुना मधुरा बीची मधुरा सलिला मधुरम कमला मधुरम मधुरा दीपते रखिला मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा जुक्ता मधुरम भुक्ता मधुरम हृष्टा मधुरम शिष्टा मधुरम मधुराधिपते रखिला मधुरम गोपा मधुरम ग्वाबो मधुरा जष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलित मधुरम फलित मधुरम मधुराधिपते रखिला मधुरम अधरा मधुरम बदना मधुरम नयना मधुरम हसिता मधुरम हृदय मधुरम गबना मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान का संपूर्ण सब कुछ क्या है? मधुर है। तब भगवान का नाम मधुर है, इसलिए कहते हैं हरि नाम कृष्ण नाम बड़ा ही मधुर, जय जन भजे कृष्ण से बड़ा चतुर। जो प्रभु का नाम लेता है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बुद्धिमान है। संसार में हर व्यक्ति बोलता है मैं बुद्धिमान हूँ, साइंस पढ़ लिया कि पीएचडी कर लिया बुद्धिमान बन गया? नहीं, हरि नाम जो करता है वो बुद्धिमान है। हरि नाम कृष्ण नाम बड़ा ही मधुर, जय जन भजे कृष्ण, जो जन भगवान का नाम करता है वो बुद्धिमान है, वो बड़ा चतुर है। भगवान का भजन करने मात्र से, भगवान का नाम लेने मात्र से। और विद्यापति अब ललिता के प्रति अत्यधिक प्रेम प्रदर्शन करने लगे। ये सब कुछ सुनने का बाद और प्रेम बढ़ाने लगा, उनसे और कुछ बताना है, और कुछ जानना है, भगवान कहाँ पे है, कैसा दर्शन होगा, सब कुछ पूछते धीरे धीरे, क्योंकि उनको भी थोड़ा और कुछ प्राइज देना चाहिए ना, है ना। माता जी के पास में थोड़ी सी कुछ आवाज मिल गया फिर आपको प्राइज देना चाहिए, अच्छा साड़ी देना चाहिए, अच्छा श्रृंगार के लिए सब कुछ देना चाहिए, फिर सब कुछ खोल देगा, सब ओपन करेगा सब डिटेल्स। फिर विद्यापति ने जितना सब कुछ उनको उत्साह का साथ है सब कुछ बोलते बोलते प्रेम प्रभु को ललिता से, अंत में उन्होंने निर्वाद का विषय में अनेक बात बतलाई। ललिता ने सब कुछ बात बता दी। विद्यापति ने उससे नम्रता पूर्वक कहा, प्रियतमे तुम अपने पिताजी के पिताजी से निवेदन करो, एक दिन मुझे अपने साथ लेकर जाएं और प्रभु को थोड़ा दर्शन कर ले, ये शरीर रहेगा नहीं रहेगा, तो एक बार आए थे भगवान को थोड़ा सा एक बार दर्शन हो जाए। विद्यापति देखिए कितना चालाक, भगवान को दर्शन क्या करेगा।